ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुभाष भाई जी उपस्थित हैं। हम सुभाष भाई का एक हाथ उठा करके स्वागत करेंगे। सुभाष भाई जो पिछले 45 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और आपका सारा ही परिवार, परिवार में जो भी रिलेटिव हैं आपके, पूरे परिवार से करीब 60 लोग, कितने 60 समर्पित माना ज्ञान में चल रहे हैं और समर्पित भी 60 में से 10 लोग तो समर्पित ही हैं। उसमें से एक सुभाष भाई जो मधुबन हेडक्वार्टर में 36 वर्षों से आप मधुबन में समर्पित हैं और आप न केवल भारत की सेवा लेकिन विदेशों में भी, जैसे यूएसए, यूरोप आदि के 17 देशों में आपने चक्कर लगाकर भ्रमण कर करके बाबा के बच्चों को अपने अनुभव युक्त बातों से भरपूर किया है, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है। आप ज्ञान सरोवर में वर्तमान समय डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की देखरेख करते हैं, निमित्त हैं और आप बहुत सरल चित, निर्माण चित, और एक विशेषता बहुत बड़ी कि जहां भी सहयोग की जरूरत होती है आप वहां सदा हाजिर रहते हैं। और एक बात जो आप उनके चेहरे से देख ही रहे होंगे, सदा मुस्कुराते हुए, सदा खुश रहते हैं, तो सेवा का फल है खुशी। तो हम इनके जीवन से देखते हैं और एक बात, जैसा कि आज का विषय है स्वस्थिति से परिस्थिति, ये विषय इनके जीवन से बहुत लगता है क्योंकि इनके सामने भी, सुभाष भाई के सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई और वो परिस्थिति थी कैंसर की बीमारी। तो उस कैंसर की बीमारी में भी जिसे आप आज मुस्कुराते हुए देख रहे हैं वैसे उस समय भी मुस्कुराते रहते थे। कोई पूछते थे क्या हुआ आपको, तो कुछ तो नहीं हुआ, आप देख नहीं रहे हो आपके सामने मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप सोचिए तो कैसे आपने अपनी स्व स्थिति से, बाबा की मदद से और मुस्कुराते मुस्कुराते कैंसर जैसी बीमारी को भी आपने परास्त कर दिया। तो सबसे पहले हम सुभाष भाई जी से यही जानना चाहेंगे कि कैंसर की बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों का दिल दहल जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई तो आपको कब पता चला, और जब आपको पता चला कैंसर की बीमारी के बारे में तो आपकी उस समय मानसिक स्थिति कैसी रही? क्या आपको उस समय घर याद आया या बाबा की याद आई या मन में हलचल चला क्या होगा, कैसे होगा, क्या उस समय आपकी मानसिक स्थिति थी?
सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद और हमारे अर्जुन भाई को विशेष धन्यवाद। मुझे अभी याद आया कि जब भी ज्ञान सरोवर तैयार हो गया था तो पहला तो मुझे नंबर यहां लग गया था ज्ञान सरोवर में, क्योंकि उस समय तो बहुत मतलब जंगल था पूरा, यहाँ आने का मन भी नहीं होता था। आज तो कितना मंगल हो गया है। तो वहाँ मधुबन में हम दोनों वहाँ सेवा करते थे, वो बर्तन विभाग में थे, मैं वहाँ डाइनिंग में था। तो उनको मैंने थोड़ा प्यार से बोला चलो वहाँ बहुत मजा आएगा, उसको इनको भी खींच के लेके आया। तो तब से हम लोग साथ में यहाँ सेवाएं भी संयोग में रहते, साथ ही रहते। तो मैं सबसे पहले तो बाबा को थैंक यू देता हूँ कि बाबा आपके कारण आज मैं आप सबके सामने अनुभव शेयर करने लायक। नहीं तो आप जानते ही कैंसर जैसी बीमारी को तो सुनते ही लोग कांप जाते हैं और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे याद है 2007 की बात है, यहाँ रामदेव बाबा आए थे, ज्ञान स्वरूप में 2 दिन थे यहाँ, और इसके नीचे जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ वो मेडिटेशन करने आए सुबह 4 बजे। और योग के बाद जब जानकी दादी ने उनको मेडिटेशन कराया, उसके बाद दादी निकल गई और रामदेव बाबा ने कहा कि अरे रामदेव बाबा जी हो और योगा नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और जो हमारे मधुबन निवासी जो ज्ञानेश्वर निवासी थी उनको 20 मिनट उन्होंने प्राणायाम सिखाया, बोला ये करो आप कभी तबियत ठीक नहीं हो, सब जो कुछ होगा सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हमने करीब करीब 2 मास प्राणायाम शुरू किया। 2 मास के बाद मुझे फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ है करके, और देखो प्राणायाम के कारण वो जो एक गांठ थी वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, और वो फिर हाथ में जैसे कि मुझे लगा नाभि खिसक गई है। लेकिन जब वो डॉक्टर को दिखाया वो चीज, तो डॉक्टर ही डर गया, अरे ये बोलता है ये तो कुछ दूसरा ही कुछ बड़ी गांठ है, बड़े डॉक्टर को दिखाओ। तो हमारे डॉक्टर मेहता, अशोक मेहता जी, या दूसरे दिन ही आए तो मैं उनके पास गया, भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ है। तो उधर ही अपना ग्लोबल हॉस्पिटल उन्होंने मुझे वहीं बेंच पे लिटा के, उनको डाउट आया कि कुछ गड़बड़ है तो मुंबई चलो। तो दूसरे दिन बाबा का प्रोग्राम था, हम सीधा मुंबई पहुंचे। फिर वहां बायोप्सी हुई तो उसका रिपोर्ट आया। अब रिपोर्ट लेके हम जा रहे थे, 6वीं मंजिल पे हमारा रहने की व्यवस्था थी, जो मुंबई में जो BHS हॉस्पिटल है अपना ब्रह्मा कुमारीज का। तो मेरे साथ मेरा बहन का लड़का संतोष भाई था, तो मैं उनको दिखाया रिपोर्ट ऐसे, तो उसने कहा कि ये रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। तो मैं तो खुश हो गया, लेकिन बहुत अच्छा पॉजिटिव है, बाबा तो हमको बोलता है ना पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसने मुझे बताया पॉजिटिव माना पता है, पॉजिटिव माना आपको कैंसर है। तो एकदम जैसे कि आंखों के आगे जैसे क्या अंधेरा छा गया, ये क्या, क्योंकि हम बचपन से बाबा के साथ खान पान रहना सब कुछ, हमें कैसा हो सकता है करके पहला थॉट्स आया। लेकिन तुरंत ही दूसरे थॉट्स मन में अंदर आया कि नहीं ये भी बड़ा मेरा एग्जाम है, परीक्षा है, और जो परिस्थिति आई है उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। और मैंने तुरंत वो लिफ्ट से 1, 2, 3 फ्लोर ऊपर जा रहे हैं ना, तो बाबा के साथ बात किए, बाबा ये शरीर आपका है, मैं भी आपका हूं, जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है आपको करना है। क्योंकि मैं उस समय करीब करीब 22-23 साल बाबा के सेवा में हो गए थे। हमने कहा वैसे भी आर्मी में देखो 17-18 साल में आदमी रिटायर हो जाता है, तो मैं भी रिटायरमेंट जैसा हो गया हूं। तो बाबा को मैंने कहा अगर मुझे ले चलना है तो अपने साथ मैं खुशी से आ जाऊंगा, लेकिन यहां रखना है तो अच्छा रखना ताकि मैं सेवा कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। वो मेरा पहला थॉट्स था। जब हम कमरे में गए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रिलैक्स, वो जो था ना घबराहट 2 मिनट की वो पूरी होगी। और मैं सोचने लगा अब मुझे क्या करना है, डॉक्टर तो अपना काम करेगा, मुझे क्या करना, मैं तो फ्री हो गया। तो पहला थॉट था कि मैं अपने परिवार को नहीं बताऊंगा, कि परिवार वालों को बताएंगे क्या होगा, दुखी हो जाएंगे, उनके थॉट चलना चालू हो जाएंगे और उनके निगेटिव थॉट्स हमारी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो जो मेरा बहन का लड़का था उसको पता था, डॉक्टर को और मुझे, और उसको बोला किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो कीमो का जो है वो शुरू हो गया, डॉक्टर अपना काम कर रहा था, अब मुझे क्या करना है। तो मैंने एक काम शुरू कर दिया, जितने भी मेरे पेंडिंग काम थे, जितने भी मैं लिस्ट निकाला।
ठीक है, मैं उस पर आऊंगा आगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कई बार देखा गया है कि कईयों के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, समस्याएं आती है, तो वो घबरा जाते हैं। मैं बाबा का बच्चा, इतने वर्ष ज्ञान में चल रहा हूं, इतनी सेवा करता हूं, मेरे सामने ऐसी समस्या क्यों आई, बाबा ने मद, उनको भी कई लोग सलाह भी देने आ जाते हैं, देखा आप ज्ञान में चलते बाबा ने मदद नहीं की, और वो भी संकल्प विकल्प चलाने लगते, हम इतने वर्ष ज्ञान में चल रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें बाबा की मदद नहीं मिली। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अंदर ऐसा कोई संकल्प तो नहीं चला कि बाबा की मदद नहीं मिली, मैं बाबा का बच्चा यज्ञ में समर्पित इतनी सेवा करता हूं तो मदद तो थोड़ा मिलना चाहिए था। तो आप भगवान के प्रति वो आस्था रही, वो विश्वास रहा कि हमारे साथ बाबा है और बाबा सब अच्छा ही करेगा, ये रहा या कोई संकल्प विकल्प चला?
हाँ, मेरा पहला जो थॉट्स आपको बताया ना, कि मैंने कहा ये है मेरा एग्जाम, अंदर ये थॉट्स है कि ये मेरा एग्जाम है। मैं इतने सालों से मेडिटेशन किया, इतने सालों से बाबा का बच्चा बन के चल रहा हूं, और अब जब परीक्षा आई तो बाबा के ऊपर ब्लेम क्यों? तो बाबा के ऊपर मैंने ब्लेम नहीं किया, बाबा तुमने इतने सारी दुनिया में लोग आए उसको क्यों नहीं, मेरे को, ऐसा कभी नहीं। बाबा के साथ इतना कनेक्ट रहा तो बाबा मुझे ऐसा अनुभव करा था कि इसमें भी कुछ कल्याण है, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसलिए मैंने बाबा को ब्लेम नहीं किया, कि और कभी थॉट्स भी नहीं चलाया कि जो हुआ अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। और मैं तो तैयार बैठा था, अगर बाय चांस अगर चलना भी है बाबा के साथ तो भी अच्छा है, बाबा के साथ चले जाएंगे, यहां तो बहुत सेवा की हा? और यहां रहना तो बाबा को बोल दिया अच्छा रखो ताकि मैं सेवा कर सकूं। तो मेरे बाबा को बोला, बाबा देखो दोनों में मेरे को फायदा ही फायदा है, चाहे उधर चलो चाहे इधर चलो।
देखो बहुत सुंदर बात बताई, ये सब सीखने की बात होती है, नहीं तो कई बार हम हलचल में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों। और इन्होंने क्या सोचा, बाबा साथ है ना, हर बात में फायदा ही फायदा है। तो जब हम कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, हम अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा ही हो जाता है, और यदि हम निगेटिव सोचते हैं तो हम उस ओर बढ़ जाते हैं। समस्या आई, परिस्थिति आई, हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है, हम बाबा की याद में रहेंगे तो वो हिसाब किताब सूली से क्या बन जाएगा, कांटा बन जाएगा, और सोचने से खत्म होगा क्या, और ही बढ़ता जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कि आपने है ना ये सोचा कि ये मेरा हिसाब किताब है और खुशी खुशी चुकतू करना है, इसमें बाबा को नहीं उलाना देना है। ठीक है, हमारे सामने भी छोटी मोटी बातें आ जाती है और उलाना देना चालू कर देते हैं, तो याद रखना आज से कभी बाबा को उलाना नहीं देना, कोई भी छोटी मोटी, इनके सामने तो बड़ी बात आई तो भी उलाना नहीं दिया, और हम छोटी छोटी बातों में ही उलाना देना चालू कर देते हैं। तो जब ऐसी बीमारी हमारे सामने आती है तो एक और हमारे अंदर संकल्प चलने लगता है कि कहां जाएं, किससे मिलें, किसको दिखाएं, है ना। और तो ऐसे समय पर आपको किसने गाइडलाइन किया, कहां जाओ, क्या करो, किससे मिलो, और साथ में कि जब हमारी दवाइयां होती है तो इसमें कीमोथेरेपी याद लेना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, बहुत दर्द भी होता है। तो ऐसे समय पर आपने क्या किया, माना आपकी दिनचर्या क्या रही, आपने कैसे उस समय को पास किया?
मुझे याद है कि इस समय मैंने बाबा के साथ रोहरियान बहुत की, जैसे अपने वाला कीमो होता है तो दर्द होता है। सबसे पहले तो मुझे याद है कीमोथेरेपी शुरू हो गई, एक कीमो हो गया, दो हो गया, तो मैं हंसने लगा, रही लोग कितना डरते हैं, ये तो कुछ नहीं, जैसे नहीं इंजेक्शन देते ऐसा कुछ है। लेकिन जब तीसरी कीमोथेरेपी हुई तो वैसे बाल खुजलाने लगा, तो देखा तो ऐसे, फिर मैंने थोड़ा सा खींच दिया तो सारे बाल का गुच्छा मेरे हाथ में आया, तो मैं सोचा कि अच्छा इसका भी असर शुरू हो गया है। तो पहला तो ये, और दूसरा गाइड मुझे, जैसे कि बाबा मुझे जैसे गाइड कर ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो हमारे दोस्त थे और वो आते रहते थे, खाना खिलाते रहते थे, तो वो बहुत फ्रेंडली थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे गाइड दिया कि तुम मुंबई चलो, और वो स्टार्ट हो गया, कीमो भी शुरू हो गया। लेकिन कि ऐसा नहीं कि हमारे डॉक्टर इसका मतलब नहीं कि दर्द नहीं होता है, दर्द तो होता है, अच्छी तरह से होता है। कई बार क्या होता है, मतलब इतना वीकनेस होता है, इतना तकलीफ होता है, तो हम उठने का भी मन नहीं करता है, हम उठ भी नहीं सकते। बाथरूम जाना है तो 10 बार सोचना पड़ता है, इतना दूर जाना है करके, मतलब इतना वीकनेस होता है। तो कई बार ऐसा लगता है, बाबा के साथ मैं बात करता, बाबा अब ये शरीर तो कुछ काम का तो है ही नहीं, ले चलो ना मुझे, ऐसे बाबा को अपर करता था, बाबा ले चलो ना। तो बाबा का जवाब क्या आता था, अच्छा तुम बाप से भी बहुत होशियार हो गए हो, बाबा को सिखा रहे हो तुम, मुझे क्या करना है करके। और उस समय मैंने देखा कि मैं जो हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश जी, उन्होंने हमको एक अभ्यास सिखाया था, सुना था, करते कभी नहीं थे। वो अभ्यास था कि जब आप यहां बैठते हो, हम वो लास्ट में कभी करा देंगे कि आप यहां बैठते तो ऐसा अनुभव करो कि यहां से धीरे 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 हम परमधाम जा रहे, बाबा से मिल रहे, फिर वापिस आ रहे। ये मैंने हजारों बार ड्रिल किया, भले लेटे लेटे, बैठे लेटे। और दूसरा एक अभ्यास मैंने किया कि बाबा मेरे ऊपर है और बाबा से।
सुभाष भाई अभ्यास के बारे में पूछेंगे आगे, लेकिन साथ में ये बताइए कि आपने शुरुआत में ये कहा कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कब तक, एक दिन ना एक दिन तो पता चलता ही है, सबको पता चल जाता है। तो जब आपके परिवार वालों को पता चला आपकी बीमारी के बारे में, और परिवार में भी विशेष आपकी, है ना, परिवार चलो ठीक है, लेकिन एक माँ हो, माँ को तो अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, तो परिवार में भी आपके लौकिक माँ को आपकी बीमारी के बारे में पता चला, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
हाँ, सबसे बड़ी बात थी कि 3 मास तो निकल गए, 3 मास के बाद धीरे धीरे परिवार वालों को पता चलने लगा, तो उनके फोन आने लगे। फोन क्या, फोन पे रोना ही शुरू, रोना शुरू। मैं सोचा ये रो क्यों रहे, मैं उनको बोला क्यों रो रहे, नहीं आपकी तबीयत खराब है। मैंने किसने बोला मेरी तबीयत खराब है, मैं तो अच्छा हूं। नहीं नहीं हमको पता चला आपकी तबीयत खराब है। नहीं मैंने बिल्कुल ठीक है, नहीं आपको मिलने आना है। मतलब क्यों, मैं ही आ जाऊंगा ना आपको मिलने के लिए। फिर मैं उनको चुटकुली सुनाता था, उनको हंसाता था, तो क्या होता था वो लोग कंफ्यूज हो गए कि सचमुच हमने गलत सुना है करके। तो वो परिवार वालों के जो रिलेशन में जो भी है वो सबको बता, नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत अच्छा है, हमने बात किया उससे, वो लोग कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। वो उससे क्या हुआ, वो सारा वातावरण जो निगेटिव होना शुरू हुआ था ना, वो फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो परिवार में जो संबंधी है जो है वो बोलते नहीं वो तो अच्छा है, उसको कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छा है। और जब भी कोई फोन आता था, भले मैं उठ नहीं सकता हूं लेकिन मुंह तो अच्छा था ना, मैं मुस्कुराते हुए हंसते हुए उनको चुटकुले सुनाता, बाबा के पॉइंट सुनाता था, तो वो एकदम खुश हो जाते, नहीं नहीं इसको तो कुछ नहीं हुआ, वो जैसा है वैसे बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हुआ है ना। तो उनके जो पॉजिटिव संकल्प क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अच्छा अच्छा करते करते मैं अच्छा हो गया।
वाह वाह वाह।
और इसके साथ साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ दादी कॉटेज है वहां गया था जानकी दादी के पास मिलने के लिए, ये 3 कीमोथेरेपी हुई तो दादी कॉटेज गया दादी को मैं,
तो दादी के बात पर हम आएंगे आगे। एक कहावत है ना कि जो सुख के दिन होते हैं कितने जल्दी बीत जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन दुख के दिन वो पहाड़ जैसे लगते हैं, एक एक दिन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसी बड़ी बीमारी थी आपके अंदर तो एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है ऐसे समय पर, बीमारी के समय पर खास करके, तो उस समय आपकी दिनचर्या कैसी थी, आप क्या करते थे, कैसे अपने समय को सफल करते थे, हम ये जानना चाहेंगे।
जैसे आपको बताया था कि मैं तो फ्री हूं, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना है, न सेवा करना है, लेटे लेटे, तो मैंने अपना दिनचर्या भी बनाई और मेरे जो पेंडिंग काम थे, एक काम था क्योंकि जब या ज्ञान सभा में बड़े कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई विंग्स के, तो सोचता था ये करूं वो करूं रह जाता था, तो एक काम रह गया था कि जो लिटरेचर था जो हमारे जगदीश भाई जब भाईसाहब ने लिखे थे वो मुझे पढ़ना था, तो मैंने एक एक किताब निकाल के धीरे 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 पढ़ना शुरू किया। दूसरा मैंने एक काम किया जो अव्यक्त वाणियां हैं बाबा की, तो मैंने एक छोटा लैपटॉप लिया और लैपटॉप में जो हमारी अव्यक्त वीडियो ऐसा लगा के सुनता रहता था, ये दो काम किया। तीसरा काम किया मैंने, जो भी उस सिचुएशन में थोड़ा कुछ होता था ना, थोड़ा वो लिख देता था, थोड़ा सा रखते आज क्या हुआ आजकल कैसे से, तो मैंने देखा कि ये दिनचर्या में, और जब कुछ नहीं कर सकता था मतलब इतना दर्द होता था, इतना तकलीफ होती थी, उस समय में क्या करता, उठ भी नहीं सकता था, उस समय मैं एक काम करता था, ड्रिल करता था कि यहां से परमधाम जाना, परमधाम से नीचे आना, यहां से परमधाम, यहां से, ऐसे हजारों बार लेटे लेटे ड्रिल करता था, तो वो मुझे बहुत काम आया। तो ये सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या इतनी आराम से जाती थी, कैसा दिन निकल गया पता ही नहीं चलता था।
बहुत सुंदर। देखो ये तो एक, ये भी सीखने की बात है कि जैसे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां हमें आती है, हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो लेटे रहते हैं, उबते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कोई मिलने भी नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। अरे उन्होंने क्या सुंदर विधि बना ली कि जितने लिटरेचर हैं, अव्यक्त मुरलियां हैं, सारा अध्ययन करना, तो ये आपके लिए तो कितना लाभ ही लाभ हो गया, क्योंकि आपने पहले ही लाभ के बारे में सोचा कि फायदा ही फायदा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप मधुबन में पुराने भाई हैं, और पुराने भाई होने के कारण आपका सभी दादियों के साथ अच्छा कनेक्शन रहा, क्योंकि आपकी सेवा ऐसी रही कि सब दादियां आपके पास आती थी, है ना, भोजन खिलाने की। तो
दो मिनट में
बाबा की। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बीमारी के दौरान यदि किसी दादी के साथ का कोई ऐसा विशेष अनुभव हो, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो दादी उससे खास मिलने जाती थी, उसके अंदर उमंग उत्साह भरती थी, शक्ति भरती थी, है ना। तो आपके साथ ऐसा कोई दादी का कोई ऐसा विशेष प्रसंग हो तो वो हम जानना चाहेंगे।
जब मेरी 3 कीमोथेरेपी हुई उसके बाद मैं ज्ञान सरोवर में आया था, तो जानकी दादी जी इधर ही थी कॉटेज में, तो मैं जानकी दादी के पास गया, तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुलजार दादी के पास लेके गई, और जानकी दादी बताती है देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया ऐसे। तो गुलजार दादी ने उस समय कहा कि कुछ नहीं, ये छोटा सा पेपर है ना पास कर देगा, ये मेरे को वरदान मिला दादी का, बाबा के तरफ से समझो। तो अंदर जैसे ना एक हिम्मत आ जाती कि दादी ने बोल दिया है। और दूसरी बात मुझे याद है कि गुलजार दादी कुछ काम से मुंबई आए थे और जहां मैं था ना उसके बाजू में जस्ट एक ऑफिस था, उसका उद्घाटन करके दादी अंधेरी से नेपेंसी रोड गई। जब वहां गई तो एक भाई ने पूछा, दादी जी सुभाष कैसे है? तो दादी जी बोलती, अच्छा कहाँ है वो? तो बोला, आप वहीं से तो आए हो। अच्छा, उसको फोन लगाओ। तो भाई ने फोन लगा के दादी को दिया। अब बताओ, देखो गुलजार दादी जिसके अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा की प्रवेशता होती है, उनके अंदर कितना निर्माण चित्ता देखा मैंने कि दादी जी ने फोन पे क्या कहा पता है? देखो ना, मेरे से एक भूल हो गई। मैंने कहा, दादी ये क्या हो गया? दादी आपको पता नहीं था ना? नहीं नहीं पता नहीं था, लेकिन भूल तो भूल होती है ना। मैं हॉस्पिटल में आई और आपको मिली नहीं, मेरा तो एकदम जैसे ना दिल भर आया। और दादी जी को ना, नहीं नहीं दादी आपको पता नहीं था ना। फिर दादी ने कहा कि देखो आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और सेवा में लग जाओ। ये दादी का दूसरा वरदान था, आज जिंदा रहूंगा तो भी सेवा करूंगा ना। तो इस प्रकार से गुलजार दादी जी ने ये दूसरा वरदान दिया था, गुलजार दादी के थ्रू बाबा ने दिया था। तो अंदर से मतलब इतना शक्ति आती है उससे। और ऐसे ही हम जब कई बार है ना दादी के साथ यहाँ बहुत रहते थे जाते थे, एक बार पिस्पा गए हम लोग, तो मैं और दादी बैठे ऐसे और बाकी जो हमारे साथ 10-15 लोग थे वो खेल कूद कर रहे, तो हम क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हम बैठे थे ऐसे। अब दादी के साथ बातें क्या करें, दादी के साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है। तो उस समय मैंने देखा एक कुमार वो कोने में खड़ा रह के दादी को देख रहा था और वहां से वो फिर अपनी दीदी के पास गया और वो उसने कहा कि पता है जिस गार्डन में दादी बैठी थी ना वहां मैं खड़ा था। मेरे अंदर इतना लगा कि देखो वो सिर्फ वहां खड़ा है तो भी कितना खुश और हम दादी के साथ बैठे हैं, हमें कितना खुश होना चाहिए, है ना। तो ये बड़ों के साथ रहने से उनका जो प्यार, उनका जो थॉट्स और उनके जो आशीर्वाद है अपने आप मिल जाते हैं। तो ये दोनों दादियों के साथ मेरा विशेष अनुभव रहा।
एक बात जो आपने गुलजार दादी की बात बताई, सच ये बहुत ही है ना, कितनी बड़ी निर्माणता। जबकि दादी को पता नहीं था कि सुभाष भाई एडमिट हैं, वहां जाकर के जब वापस आ गई और इनके बारे में सुना हा? तो क्या कहा फोन में, फोन लगवाया और बात की कि मेरे से गलती हो गई। जबकि सुभाष भाई बोल रही, नहीं दादी ऐसा कोई बात नहीं, आपको तो पता नहीं था, है ना। अब ये सब चीजें है ना, इससे पता चलता है कि दादी दादी कैसे बनी, क्या उनके अंदर इतने बड़े होते हुए भी इतनी निर्माणता।
तो हम दादी की एक और बात सुनाता हूं, वो बहुत दिल को छूने वाली। हम यहां थे, यहां से हम शांतिवन गए दादी से जस्ट मिलने के लिए। तो दादी ने समाचार पूछा, क्या चल रहा है प्रोग्राम, ये हो तबीयत कैसी है? ठीक है। फिर हमारे साथ और एक भाई थे, हम दोनों बैठे थे। तो दादी जी ने कहा, अच्छा 2 मिनट बैठना मैं आती हूँ। हम लोग ऐसे बैठे थे, दादी के बेडरूम में ही थे बैठे। तो दादी जी 2-3 मिनट के बाद वापिस आई और दादी के हाथ में पता है क्या, 2 प्लेट थी, उसमें नमकीन मीठा ये सब भर के ऑफर करी हमको। हम लोग तो ऐसे चौंक गए, दादी ये क्या कर रहे हो? अब दादी ने दिया, मना भी नहीं कर सकते। तो दादी ने, हमने कहा दादी ऐसे थोड़ी, हम तो बच्चे हैं छोटे। नहीं, जब मैं ज्ञान सरोवर में आती हूँ तो आप लोग कितना खातरी करते, मैं भी करूंगी। तो कितना देखो,
नहीं तो दादी ऑर्डर कर सकती ना, किसी को भी बोल सकती थी भाई 2 प्लेट लगा कर ले आओ, लेकिन दादी ने खुद, बहुत बड़ी बात। तो इतनी सुंदर बातें आप दादी के बारे में बता रहे हैं तो और भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे आपसे दादी मिली और भी भाई बहने आपसे मिलने आते रहे होंगे और कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, भाई कैसे हुआ, कैसे बीमारी आई, क्या है, कैसी तबीयत है। तो जो आपके पास लोग आते थे पूछते थे, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देते थे?
सबसे बड़ी बात हुई कि धीरे धीरे जो पेपर आया पास हो गया, ठीक भी हो गए, मैं ज्ञान स्वरूप भी पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ, शिवानी बहन और सुरेश अबरा यहां आए थे ज्ञान स्वरूप में, मैं खाना खिला रहा था उनको, तो मैं इनको अनुभव सुना रहा था जो मेरे जिंदगी का बहुत बड़ी बात है। वो कि मैं अपने कमरे में बैठा था और बाबा का प्रोग्राम शांतिवन में चल रहा था, तो एफएम रेडियो उसमें वो आ रहा था। तो अभी बाबा दृष्टि दे रहा है, फिर अभी मुरली चालू होने वाली है। तो हमारे कमरे में एक ट्रांसलाइट का चित्र था, तो जैसे मुरली शुरू होने वाली थी तो मैंने बाबा से बात किया, बाबा 25,000 लोग डायमंड हॉल में, आप उनको मुरली सुनाओगे और मैं अकेला बैठा हूं, और मेरे आंखों से ऐसे पानी आने लगा, पूरा ऐसे पानी आने लगा। इतने मैंने अनुभव किया वो ट्रांसलेट से। धीरे 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 बाबा मेरे तरफ आए, मेरे बाजू में बैठे, और जो पूरा 1.25 घंटे की मुरली पूरी बाबा मुझे सुना रहे, और मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी खुशी, इतना जैसे मुरली पूरी हुई ना, मैं वहां से नीचे डाइनिंग में गया और वहां घूम रहा है। सब लोग बोले, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम यहां क्यों घूम रहे हो, तुम यहां क्यों? लेकिन मेरे जो अंदर जो खुशी हुई, आनंद हुआ, अब मैं किसको बताऊं मेरे बाबा ने मुरली सुनाई करके। लेकिन अंदर अंदर इतना शक्ति, इतना पावर। तो ये जो अनुभव है, मैं शिवानी बेन और सुरेश अबराय को सुना रहा था, तो शिवानी बेन ने कहा मुझे मत सुनाओ, इसको लिखो और ज्ञानामृत में डालो। मुझे अंदर अंदर हंसी आई, ये बीमारी कोई लिखने की चीज होती है क्या ऐसे? तो मैंने वो ज्ञानामृत में, हमारे जो गोविंद भाई है वो करेक्शन अच्छा करते, उन्होंने अच्छा बना दिया, श्रृंगार किया और दे दिया। जैसे ज्ञान अमृत में गया तो उनको इतना अच्छा लगा, उसका ट्रांसलेशन कर दिया वो वर्ड रिन्यूअल में इंग्लिश में। फिर जैसे आगे गया तो मराठी, गुजराती, तमिल, सब भाषाओं में, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 2000 मैं समझता हूं 11 की बात होगी ये। तो क्या हुआ, ये जो सबको पता चल गया कि इसको तबियत, मतलब कैंसर हुआ था, ये ठीक हो गया, सबको पता चल, बाबा का सीजन शुरू हो गया। अब मेरे को प्रॉब्लम ये हुई कि जो भी आए सुभाष को मिलना है, जो भी आए सुभाष को, क्योंकि पता चल गया ना सबको, तो मैं कमरे में नहीं जा पाता था। बीमारी में जितने तकलीफ नहीं होती कमरे में जाओ तब फोन आवे आपको मिलना है, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन मैं सबको यही बताता था, देखो जो हमारे भाग्य में है, जो हमारा लिखा हुआ है, वो सबसे पहले हमें उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई ये परिस्थिति आई। अब परिस्थिति जब हम स्वीकार करते तो उसके फिर रास्ते बन जाते, अब मुझे आगे क्या करना है। जब हम मेंटली हम तैयारी नहीं हुए, नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, इसी में जाएंगे तो उसी में आप मतलब तकलीफ में आ जाएंगे। जो परिस्थिति उसको स्वीकार करो, अब उसको कैसे सुलझा सकते, कैसे ठीक कर सकते, उसके पर विचार करो और उस मार्ग से आप धीरे 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 आगे बढ़ो, तो आपके पास अपने आप सफलता आएगी ही आएगी।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप बीच में एक बार बता रहे थे कि मैं क्या प्रयोग किया, तो हम जानना चाहेंगे कि आप स्थूल दवाइयां तो जो है सो करते ही थे, लेकिन विशेष जो योग अभ्यास किया, योग का प्रयोग किया, वो क्या प्रयोग किया वो आप बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उस प्रयोग के द्वारा आपको कहां तक सफलता का अनुभव हुआ।
ये अभ्यास हम अभी 5 मिनट कर भी देंगे बीच में, कोई बात नहीं। तो पहले आपको बताता हूं कि सिंपल है, हमको जगदीश भाई जी, सूरज भाई, इन्होंने सिखाया था, लेकिन कब किया नहीं था, लेकिन उस समय मैंने किया। तो शिव बाबा जो है बहुत दूर नहीं, निराकार शिव बाबा बहुत नजदीक हमारे, और वहां से एक ब्लू वायलेट रेज हमारे इधर आ रही है, शीर से लेके फिर कान नाक आंखों से धीरे धीरे गले में, फिर छाती में, फिर पेट में, फिर ऐसे टांगों में होते नाखून तक, फिर ये अनुभव करेंगे कि पूरा शरीर जैसे ब्लू वायलेट हो गया है, और फिर मेरे शरीर के अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है वो भस्म हो गई, खत्म हो रही है, मैं अब एकदम कंचन काया, मेरे शरीर में कुछ भी बीमारी नहीं है, और फिर धीरे धीरे फिर बोलते कि मैं आत्मा भी अभी प्योर होता जा रहा है, फिर आत्मा भी शक्तिशाली, आत्मा जो पूरा एक गोल्डन कलर हो रहा है, ऐसे अनुभूति करते हैं, तो इतना अच्छा लगता था। और जब भी टाइम मिलता था ये मैं अभ्यास करता था, उससे मुझे बहुत, एक तो जब दर्द होता था उस समय बहुत रिलीफ मिलती थी और इजीली उस समय को निकाल देता था, और साथ साथ बाबा के साथ कनेक्शन होता था। तो अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट अपन ये अभ्यास
करके, क्योंकि हम लोग भी छोटी छोटी मोटी बीमारियां, तो हर बीमारियों में उसका प्रयोग कर सकते हैं ना।
तो अभी सब अलर्ट बैठो एकदम, और जैसे आपको बताया मैं थोड़ा इस कमेंट्री भी करूंगा, उसी हिसाब से आपको अनुभव करना है। या अनुभव करो कि शिव बाबा, निराकार शिव बाबा मेरे ऊपर है, एकदम शीर के ऊपर, बाबा से एक ब्लू वायलेट का रेज मेरे शीर पर, शीर से मस्तक, आंखों में, कान मुंह पूरा, धीरे धीरे पूरा चेहरा ब्लू वायलेट हो रहा है। अब धीरे धीरे आगे गले के तरफ, पूरा चेस्ट और पूरा पेट अभी ब्लू वायलेट होता जा रहा है, पूरा कमर का हिस्सा अब धीरे धीरे वो ब्लू लाइट कलर जो है, दोनों टांगों में अभी लास्ट में घुटने होते हुए पैर और नाखून तक, अब यह अनुभव करो कि पूरा शरीर मेरा ब्लू वायलेट हो गया है, शरीर के अंदर जो भी बीमारी के जर्म्स है, जो भी निगेटिव एनर्जी है वो भस्म होती जा रही है, शीर से लेके पैर तक कोई भी बीमारी का जर्म्स उसको खत्म करता जा रहा है। बाबा की इतनी पावरफुल लाइट से, उस पावरफुल रेस से अंदर के पूरे जर्म्स भस्म होते जा रहे हैं। अब मेरा शरीर पूरा प्योर, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं, एकदम कंचन काया, एकदम प्योर। धीरे धीरे हमारा जो आत्मा है वो भी प्योर होता जा रहा है। जो आत्मा एकदम गोल्डन लाइट बनता जा रहा है। अब मैं एकदम स्वस्थ और मस्त, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे शरीर आत्मा दोनों भी प्योर बना दिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस प्रकार आप पूरे दिन में जब भी समय मिलता है तो यह अभ्यास आप करते रहिए, तो आपको बहुत ही शरीर के लिए भी आत्मा के लिए भी फायदा होगा।
बहुत सुंदर। तो आप स्थूल दवाइयों के साथ साथ क्या योग का प्रयोग किया वो आपने करके दिखाया, अनुभव कराया। हम लोग भी है ना ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। दवाई के साथ सबसे बड़ा जो दवाई हमारा होता है वो योग। बाबा कई बार कहते हैं कि योग से आप अपनी शरीर को लंबी आयु कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। योग का बहुत बड़ा हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो एक बात, मैंने कई बार आपके मुख से ये शब्द सुना था कि आप कहते ये बीमारी नहीं लेकिन हमारे लिए लॉटरी है, कैंसर जैसी बीमारी, और आप लॉटरी शब्द बोल रहे हैं जिससे लोग नाम सुनना नहीं चाहते, लोग इतना डरते हैं। तो आप कहते हैं हमारे लिए लॉटरी है, तो लॉटरी कैसे आपके लिए है वो हम जानना चाहेंगे।
सचमुच बाबा को धन्यवाद है कि वो हमारे एक तो पूरा नया लाइफ मिल गया, दूसरी चीज इस बीमारी के दौरान में, क्योंकि कुछ परहेज होता है तो परिवार, तो आपने बोला ना बड़ा 60 लोग है तो सबका दिल होता था हम भी कुछ सेवा करें। तो सबसे पहले हमारी एक बहन की लड़की एक भाई की लड़की आई, अब उनकी शादी विधि करनी थी उसके बाद सब, तो बोले चलो एक बार जाके सेवा करके आते। तो कुमारे थी तो आई सेवा में, तो उनको आर्ट गैलरी में सेवा और बाकी हमारा फीका भोजन ये जो परहेज वाला भोजन बनाती थी। तो एक मास, दो मास, तीन मास रहेगी इधर, तीन मास के बाद यहाँ एक कुमारी की भट्टी थी, तो मैंने कहा आप जाओगे इसमें, तो हाँ जाएंगे। तो उन्होंने भट्टी की, भट्टी के बाद सीधा मुंबई सेवा में, एक बोरोली एक पार्ला में गई। उसके बाद दूसरी दो आई परिवार से, तो वो भी आर्ट गैलरी में सेवा, हमारा भोजन बनाती थी वो भी बम्बई गई सेवा में। तो ऐसी चार तो ब्रह्मा कुमारी बन गई। अच्छा, दूसरा जब ये अनुभव सुनाते तो सबको अच्छा लगता है, जैसे ज्ञानामृत में गया, जैसे तो क्या हुआ, ये हमारा जो ई टीवी वालों उनको पता चला तो उन्होंने 13 एपिसोड बनाए मराठी में। फिर उसके बाद पीसा पॉइंट वालों को पता चला तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया वो भी। तो इस प्रकार से हम लोग बचपन, मतलब शुरू से टीवी देखते थे, मतलब चलो टीवी देखा, लेकिन टीवी में कभी हम आएंगे कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये बाबा के कमाल देखो, ये बीमारी के कारण। अच्छा, शुरू में यहाँ आए तो हमारे पास सारे देश विदेश के लोग आते, तो बोलते थे हमारे पास कब आओगे, जैसे अमेरिका है, यूरोप है इधर, तो हम अंदर मजाक में बोला हाँ हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन जब बीमारी के बाद धीरे धीरे हमको चांस मिलने लगा, तो सबसे पहले दुबई गए, फिर सिंगापुर, मलेशिया गए, फिर उसके बाद यूरोप गए, लंदन दादी जानकी दादी के पास, उसके बाद अमेरिका गए 2.5 मास थे। तो क्या हुआ, जिधर भी जाते थे तो थोड़ा सा ज्ञान सुनाना शुरू करते थे, तो बीच में कोई उठ के बोलते थे नहीं नहीं हमको ज्ञान नहीं सुनाओ, वो आपका अनुभव सुनाओ, हमने पढ़ा है आपका अनुभव। तो मेरे को कुछ तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिधर जाते थे वो बाबा जो अनुभव जो कैंसर वाला अनुभव वो सुनाते थे, तो इतना लोग खुश हो जाते थे। एक जगह मैं वैंकूवर में कनाडा में है वहां गया, तो अनुभव के बाद एक माता जी खड़ी हुई रोते रोते, बोला पता है आपको किसने बुलाया? मैंने कि किसने बुलाया, मैं ही तो आया हूं। नहीं मैंने बुलाया आपको। बोला कैसे? बोला आपका मैंने पीस ऑफ माइंड में सुना था आपका अनुभव, और तब से मैं रोज अमृत वेला बाबा को बोलती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना, ये भाई से, आज बाबा ने आपको मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो देखो माताओं के अंदर कितना शक्ति होती है, कितना सुनना पड़ता है बाबा को, माताओं की बातें। तो इस प्रकार से हर परिस्थिति को हम कैसे फेस करें, उसको पॉजिटिव चीजें कैसे निकाले और आगे कैसे बढ़े, ये हम यहाँ सीखा इसमें।
बहुत सुंदर बात बताई। आपकी बीमारी क्या हुई कि जो आपके सेवा में आते थे वो ब्रह्मा कुमारी बनकर के ही चले जाते थे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो
और जो लिखने के जो आदत पड़ गई ना, उसके बाद क्या हुआ पता है, जानकी दादी ने शरीर छोड़ा तो माइंड में तो बहुत घूमता घूमता था, दादी के साथ ये किया, दादी के साथ ये किया। तो हमारे एक राजू खुशी के जो एडिटर थे दीक्षित, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुभाष भाई आप इतना लंबा लंबा लिखते, कोई टाइम नहीं पढ़ने के लिए किसी के पास, आप छोटा छोटा लिखो। तो दो दो मिनट का मैं आर्टिकल लिखना शुरू किया और व्हाट्सएप में डालना शुरू किया। तो मैंने जानकी दादी के 50 लिखे, फिर हमने प्रकाशमणि दादी के 100 लिखे, फिर हमने गुलजार दादी के 50, जगदीश भाई के 50, मम्मा के 25, ऐसे जैसे नहीं एक लहर बन गई। तो ये जो कैंसर से जो है ना, ये एक चीज मेरे जैसे
लिखने का वरदान,
लिखने का जैसे वरदान मिल गया। तो ये बाबा की कमाल है कि हम परिस्थितियों को कैसे यूज करें, ये हमें बाबा सिखाता है, लेकिन हमें खुद को करना होता है सारी चीजें।
तो आपने इतनी सुंदर सुंदर दादियों के अनुभव लिखे हैं, तो हम चाहेंगे हमारे सामने शेयर करें, और विशेष करके जो आपके पास है ना, काफी आप उनके क्लोज में रहे हैं, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी और जानकी दादी, ऐसा कोई विशेष अनुभव जो आपके दिल को अमिट छाप छोड़ गई हो।
पहले तो मैं प्रकाशमणि दादी के साथ हमारा काफी मतलब जैसे माँ और बच्चा ऐसे ही था, और बहुत छोटा था तो दादी में बोला तू बहुत छोटा हो, तुम अभी समर कितने हो सकते, लेकिन अंदर से बहुत लगन होती थी। तो मुझे याद है दादी ने कहा कि अभी नौकरी करो जाओ ऐसे, तो मैंने कहा जी दादी, हाँ जी जरूर करता था दादी, जी दादी। तो दादी ने वो मुझे एक पार्ट सिखाया। तो क्या हुआ, जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम था तो दादी जी को मैंने कहा दादी जी मैं राखी का प्रोग्राम करके चला जाऊंगा। बोला ठीक है बहुत अच्छा। तो जब भोली दादी को पता चला कि जा रहा है करके, तो भोली दादी, जमुना दादी, पुरानी दादी है ना, तो हम खाना खिलाने की सेवा थी मधुबन में, तो ये सब है ना भोली दादी के पास गए, भोली दादी प्रकाशमणि दादी के पास गए। प्रकाशमणि दादी मतलब भोली दादी रोज अमृत वेले के बाद दादी के पास जाके आज क्या भोजन बनाना है वो मेन्यू लेती थी। तो भोली दादी ने बड़ी दादी को बोला दादी सब लोग इसकी मांग करे, ये बहुत अच्छी सेवा करे, ऐसे करके दादी को बताया प्रकाशमणि दादी को। अब दूसरे दिन राखी का प्रोग्राम ओम शांति भवन पे स्टेज पे, अब मेरे मन में कि कल तो हमको जाना है, तो मैंने कहा सबसे लास्ट राखी बांधो, सबसे लास्ट, तो सब एंजॉय करा था। तो लास्ट में दादी ने बोला आ जाओ, गया राखी बांधी दादी जी ने, और दादी जी ने मेरे को ऐसे जोर से पकड़ा, ऐसे ऐसे करा, सभी को नहीं किया लेकिन मेरे को क्या ऐसे, मैंने कुछ खास, और फिर कहा ऐसे किया, आज से तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको यही रहना है बाबा के पास। तो मेरा एक वो दादी का वो मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा खुशी का दिन था, इतना खुशी। दूसरा जानकी दादी के साथ, जानकी दादी तो वो भी जैसे माँ, क्योंकि क्या होता कि जब ज्ञान सरोवर में दादी आई ना इधर, तो विदेशी लोग यहाँ होते थे तो खाना यहीं खाते थे, हम लोग तो इतने बड़े भी नहीं, तो हंसी मजाक खेल कूद तो करते थे। तो होली का दिन था, तो क्या हुआ जब एक बहन है ना डाइनिंग में आई, उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, होली डालते हैं ना सब एक दो कलर डालते, तो पानी डाल दिया। अब वो रोते रोते दादी के पास चली गई। अब पता चल गया, वहां से मैसेज आया, प्रवीण ने तुम्हारी तो शिकायत हो गई, तुम्हारा तो खबर होने वाली है। मैं तो डर गया क्योंकि दादी तो इतना प्यार करती है, अभी दादी को ऐसा ठीक नहीं है। और क्या हुआ, होली के दिन ही मैसेज आया कि दादी भोजन करने आ रहे 5 नंबर में। तो दादी आई भोजन, मैं सब तैयारी कर दिया और ये कोने में जाके बैठ गया। तो दादी जी ने खाना खाया, इधर उधर देख रही है, वो कहाँ गया नटकट, ऐसा बोला। और फिर बोला, सबने बोला देखो उधर बैठा है, आओ इधर आओ, मतलब बुलाए इधर, यहाँ बैठ, ऐसा बोले यहाँ बैठ, ऐसा क्या। और फिर क्या हुआ, बिठाया और एक टेबल पे गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन मेरे मुंह में डाल दिया।
वाह वाह क्या बात है।
मुंह में गुलाब जामुन डाला और टेबल पे जयंती बहन, प्रवीणा बहन, हंसा बहन सब, और वो जिसके ऊपर पानी डाला वो भी बहन थी उधर। बोले तो दादी आप क्या कर रहे हैं, इसको डांटो इसको, ऐसे बस। फिर पता है देखो कैसे बड़े लोग कितना मतलब युक्त। उसके बाद में संकल्प किया, नहीं अभी हमको होली नहीं खेलना है, किसी के ऊपर पानी कलर किसी को कचरा नहीं डालना है करके। तो देखो ये डाटा नहीं, कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक गुलाब जामुन खिलाया, उससे कैसे चेंज हो गया। तो ये बड़ों की कमाल होती है, ये विशेष
क्या बात है। डांटने के बजाय इनको गुलाब जामुन ही मिल गया।
तो कैसे चेंज कैसे होता है, मैंने देखा देखो ऐसे बोलते डांटते फिर अगले साल फिर खेलते,
शायद नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता, ये विशेष मैंने।
तो बाबा भी हमारी इसी प्रकार चेंज करते हैं ना, रोज मुरली में क्या बोलते हैं, मुरली की शुरुआत कहाँ से होती है, मीठे बच्चे, बोला कभी कड़वे बच्चे, कितना भी हम गलतियां करें तो जो बाबा ने किया सचमुच दादियों ने वही बात फॉलो किया।
और गुलजार दादी के साथ का हमारा मतलब बहुत नजदीक के मतलब प्रेम प्यार, कुछ भी होता था, हम जिस गाड़ी नया लिया मिला था यज्ञ से, तो हमारा बहुत संकल्प दादी से उद्घाटन करना है, हम लोग शांति बन गए। तो दादी को बोला हाँ क्यों नहीं मैं करूंगी ना, तो दादी ने नारियल तोड़ के मतलब इतना प्यार इतना स्नेह होता था। और गुलजार दादी की हम मतलब लास्ट की बात सुनाते हैं कि दादी कॉटेज में, दादी है ना एक ही रोटी खाती थी, बड़ा मुश्किल से एक ही रोटी खाती, तो हम लोग प्लान करते दादी को 2 रोटी खिलाना है, कैसे खिलाना थे। फिर हम लोग क्या सामने एक स्क्रीन लगाते थे, टीवी होती थी, तो दादी के पास हम बैठते थे, नीलू बहन एक तरह हम एक तरह से बात कर दादी से बात करते करते, तो दादी ये वो जानवरों का वीडियो लगाते, तो दादी ये क्या चीज है, तो हमने कहा तो दादी बोलते ये शेर है, तो नहीं दादी ये तो भालू है, नहीं नहीं शेर है। और इधर हम क्या करते आधी रोटी तोड़ के दादी के थाली में डालते थे, फिर दादी बोलते आज रोटी क्यों नहीं खत्म हो रही है। तो ये दादियों के साथ। फिर हमारे आदरणीय जगदीश भाई थे, जगदीश भाई की उनकी एक विशेषता थी, जगदीश भाई साहब की जब उनको भोजन परोसते थे तो योग करते थे, बाबा वाइब्रेशन देते थे और फिर भोजन करके फिर उसके बाद कोई चीज नहीं लेते थे और बात नहीं करते थे। देखो कितनी बड़ी बात
है।
पूरा मतलब भोजन करते थे बात नहीं करते थे, और जब वापस जाते थे तो जो खाना खिलाने वाले थे ना उसको थैंक यू ऐसे नमस्कार करते थे, आपने बाबा का ब्रह्मा भोजन हमें खिलाया। तो मतलब ब्रह्मा भोजन में एक तो नुक्स नहीं निकालते थे कि ये ठीक नहीं, नमक नहीं, ये नहीं, और ब्रह्मा भोजन के प्रति उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड वो बहुत बड़ी बात थी। एक बार क्या हुआ, हमारे पास विदेश की बहन आई थी, मधुबन की बात है ये, तो भाई साहब बैठे खाने पे, अभी भोजन करने वाले थे, इतने वो बहन आए, वो अमेरिका का समाचार सुनाने लगी, एक मिनट हो गया, दो मिनट हो गया, तीन मिनट, वो रुके ही नहीं। तो जगदीश भाई ने कहा ओम शांति, मैं भोजन कर सकता हूं अभी? वो तो इतना शर्मा गई और नहीं नहीं भाई साहब भोजन करो। फिर मतलब इस इतना नियम के पक्के थे, तो उनसे ये हमको सीखने को।
अच्छी बात सुनाई, मैं आपसे पूछने वाला ही था कि मानो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते चलो हम बाबा की याद में पूरा समय मौन में होकर भोजन करेंगे, और उसी समय ऐसा कोई न कोई आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात कि प्यार से उसके आगे हाथ जोड़ लो कि भाई थोड़ा बाबा की याद में भोजन कर रहे हैं, उसके बाद बात कर लेंगे।
और जैसे रमेश भाई जी, एक एक बात सुनाता हूँ, सब महारथी रमेश भाई जी, जैसे आज आप रात को 9 से 10 जानकी पार्क जाने वाले, उसकी बात सुनाता हूँ। कई लोग गए उनके पास कि भाई साहब ये 6 बीघा जमीन बाद में लिया, अभी लिया 2015 में लिया है, तो सभी को बोला नहीं हमको जरूरत नहीं, क्या करना है, कुछ बिल्डिंग नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ हो जाता था। सब हमारे जो ग्रुप है उन्होंने नहीं, आप एक बार जाके ट्राई करो, लास्ट में ट्राई करो। तो मैंने उनको 3 बातें सुनाई, 1 2 3। उन्होंने भी मुझे, बड़ा वकील है ना, बहुत बड़े वकील है, तो मेरे को पटा दिया नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब, वैसे भी आपने कोई जरूरत नहीं, कोई काम की तो है ही नहीं, ना बिल्डिंग बना सकते, लेकिन एक जो निगेटिव पार्टी कोई है वो उसके जगह के पीछे पड़ी, वो हमको मिल जाए, अगर वो अगर लेंगे तो आप दुकान शराब बराब कुछ भी रख। अच्छा ये कैसे हो सकता है, बोलो वही। तो तुरंत उन्होंने कहा नहीं इसको लेना है, तो फिर वो जमीन ली, और देखो आज आप जाएंगे जानकी पार्क कितना सुंदर सजा हुआ है। तो बाबा की कैसी सेवाएं, बड़े लोग किस प्रकार से सेवाएं करते है और कैसे जांचते पड़तालते और आवश्यक होती वो काम करते भी है, वो हमने देखा।
बहुत सुंदर आपने अनुभव, अपने अनुभव के साथ साथ दादियों के ऐसे अनुभव सुनाए कि जो हम कभी सुने भी नहीं थे, बहुत अच्छी बात। तो मैं अंत में ये पूछना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा अभ्यास किए, योग के सुंदर सुंदर अभ्यास किए, है ना, तो साथ में हम सब भाई बहनों को अंत में क्या कहना चाहेंगे, हम किस बात का ध्यान रखें, इस बीमारी को देखते हुए हम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, विशेष बातें हम अपने जीवन में क्या विशेष ध्यान रखें।
देखो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, ये जो अमेरिका में रिसर्च किया गया कि ये जो बॉडी है ना हमारी, इंसान की बॉडी, अगर इसको जैसे एक बाल आंख कान ये सबको अलग 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 करके इसकी कीमत निकाली जाए ना, तो कितना है पता है, 225 करोड़। कितना? 225 करोड़। देखो परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी मर्सिडीज कार दी है, हम यूज कैसे करते। कैंसर के समय मैंने देखा कि हम एक कदम भी चल नहीं सकते थे, तो मुझे ये एहसास हो गया कि जब हम अच्छे होते तो हम सोचते नहीं, हम चल रहे बोल रहे ये कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम अपने को वैल्यू देना सीखो कि हम बहुत महान हैं, परमात्मा से तो हम प्राप्ति कर ही रहे, परमात्मा ने हमें चुन तो लिया है, लेकिन उन्होंने जो हमें बनाया है इतना अच्छा शरीर, देखो एक मोबाइल होता है 10,000 15,000 25,000, तो हम उसको कितने बार साफ करते, क्लीन रखते, उसके ऊपर गार्ड रखते, उसको यूज करते, कितना संभाल रखते। तो ये जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इतनी अच्छी गाड़ी है या जो भी बोलो, तो इसका हमें संभाल करना है। इसके लिए आपको योगासन करना है, प्राणायाम करना है, और देखो हम अपने शरीर के साथ कितने सालों से जब से जन्म हुआ तब से, तो क्या हम अपने शरीर को इतना भी जान नहीं पाए कि ये शरीर अगर आलू खाता है तो गैस होता है, गोभी खाता है तो ये होता है, इतना भी हम अपने शरीर के साथ इतना भी कर नहीं सकते। तो हम अपने को खुद को देखो कि क्या चीज खाने से हमको तकलीफ होती, उसको छोड़ दो। भाई खट्टाई खाने से मुझे ये तकलीफ होते है, गैस होता है, फलाना होता है, तो वो अपने शरीर की स्टडी करो और शरीर को अच्छा रखो। अगर आपका शरीर अच्छा होगा आप योग अच्छा कर सकते हैं। अभी भी वर्तमान समय में रोज प्राणायाम करता हो, योगा करता हो, थोड़ा खेलता भी हो, फिर मैं यहां से मुरली के बाद यह एक गांव है सालगांव, वहां जाता हूं, व्हीट ग्रास पीता हूं 12 साल से कंटिन्यू रोज व्हीट ग्रास। तो मेरा वॉकिंग भी होता है, व्हीट ग्रास भी होता है, लेकिन एक भी रुपए की दवाई कोई नहीं, यही नेचुरल। और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं पहले था उससे भी एक्टिव हो गया हूं।
वाह वाह,
पहले से भी एक्टिव हो गया। तो ये हमें अपने शरीर का ध्यान खुद रखना है। हम उसके पास जाए ये कैसे हो, हम पूरा जीवन हम अपने साथ रहे ना, शरीर के साथ रहे, तो क्या हम अपने थोड़ा सा अगर आप अटेंशन दें, बोलते ना आप अंदर देखो, अंदर की तरफ जाओ, थोड़ा हम अंदर देखो। अच्छा, दूसरा हमारा जो सोचने का जो तरीका होता है, सोचने का किसी के प्रति निगेटिव या किसी के प्रति ऐसे, तो उसका भी असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या क्या, क्योंकि आत्मा को अच्छा खुराक मिलेगा, आत्मा अच्छा रहेगा तो वो शरीर के ऊपर भी उसका फर्क पड़ेगा, शरीर अच्छा होगा तो आत्मा के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो दोनों का एक कंबाइंड, जैसे नहीं हमारे पास मोबाइल बहुत अच्छा है लेकिन साथ में सिम भी हमारा अच्छा नेटवर्क का होना चाहिए, तो दोनों का कनेक्शन अच्छा होगा तो दोनों भी अच्छा काम कर सकते। तो सबसे पहले हम अपने शरीर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और सिर्फ ख्याल नहीं रखना है, उसको यूज भी करना है। हमें याद है कि हमारे जो वेदांती बहन यहां आए थे, तो वो कोई बड़ा वीआईपी मिलने आया उनके सेंटर पे, तो बोला आइए आइए बैठे इधर। तो बैठा, बोला आप 5 मिनट बैठिए तब तक आपको दीदी मिलेगी करके। वो फिर 5 मिनट वो सफाई करके वो वेदांती बहन अंदर गई, ड्रेस वेस पहन के, साड़ी वेड़ी पहन के, ओम शांति। तो कंफ्यूज हो गया कि वो कौन थी, फिर रोज सफाई करती थी वो कौन थी, ये कौन थी। और फिर उसने पूछा कि जो अभी थे वो कौन, बोला मैं ही थी। तो बोला आप ही करते सफाई। तो वो बात उसको इतनी अच्छी लगी कि बोलते कि यहां नहीं, ये प्रैक्टिकल है, जो आप बताते वो अपने जीवन में धारण करते। तो उससे वो ज्ञान में चल पड़ा। तो ये चीजें हमारे जीवन में हम कई बार बोलते थे, कई बार हम भी ये अनुभव करते, कई बार किसी को कुछ चीज बताने से खुद करना अच्छा लगता है, तो उसमें खुशी भी मिलती है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर का स्टडी करो, उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, उसको नींद कब चाहिए, उसका स्टडी करो, वैसे करो तो एकदम मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, और स्वयं परमात्मा आपके साथ है, कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारे जीवन में अपने साथ रख के, और बाबा जब साथ होता है तो हर कदम हमें मदद तो मिलती है, लेकिन वो मदद हमें कैसे करते और बाबा कैसे मदद करता है, ये नहीं कि बाबा चले गए पता नहीं, देखता है नहीं देखता। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं, अभी ये जो लॉकडाउन की पहले की बात है, सिल्वर जुबली थी, तो एक यूपी से है ना एक जज आई थी, वो क्या मेरे को शिवानी दीदी से मिलना है बस, मेरा और कुछ नहीं। तो आया, आई मिली शिवानी बहन से किसी ने, उससे खुश हुआ, हो गया काम। तो जो साथ में जो भाई शायद इधर क्लास में भी आए शायद वो, तो वो जब वापिस जा रहे तो चलो पांडव भवन जाते बाबा के रूम में, तो बाबा के रूम में गए तो बोला क्या जाना है उधर, बाबा का चित्र तो है क्या, नहीं नहीं यहां हमारा सिस्टम है, जब यहां से हम जाते ना तो 5 मिनट बैठ के जाते। अच्छा, वो चली गई। तो 5 मिनट हो गया तो उसको, क्योंकि टैक्सी बाहर खड़ी थी, वो भाई चलो नहीं बोलता और 5 मिनट, फिर वो भाई गया चलो नहीं और 5 मिनट, फिर 15-20 मिनट के बाद वो बाहर आई रोते रोते आंखों से, बोले क्या हुआ। बोलते बाबा बोलते बच्ची तुम इतने दिनों से कहाँ गई थी, तुम इतने दिनों से कहाँ गई थी, और इतना मुझे बाबा प्यार कर रहा है, मुझे और बैठना है। फिर और जाके बैठी, और अब भी वो वर्तमान समय वो इतनी सेवा करे, मैं तो भूल भी गया उसको। अर्जुन भाई उनको जानते हैं, उन्होंने सेंटर बनाने में हर बात में कितना मदद और कितनी सेवाएं करते हैं। तो बाबा अपना काम कैसे करते हैं? मुझे याद है 1986 में मधुबन में बाबा का सीजन ओम शांति भवन बन गया था 83 में, तो बहुत लोग आने लगे, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो बाबा को पूछा अब एक तो बाबा पानी की बहुत तकलीफ है, तो बाबा बोलते बच्चे ढूंढो इधर ही है पानी, ढूंढो जरा। तो लोग ढूंढने लगे कहाँ पानी कहाँ पानी। तो कमाल की बात है कि हमारे जो पांडव भवन है ना, उसके पीछे एक त्रिमूर्ति चार भुजा बिल्डिंग है, तो वो सेल करना था, तो बहुत सस्ते में वो यज्ञ ने ले लिया दो चार लोग मिलके। और उस जगह पे एक बहुत बड़ा कुआ था अंदर ही अंदर, और उसमें बहुत पानी था, तो डायरेक्ट वहां से पानी यहाँ पांडव भवन में आता था, बहुत नजदीक है। तो देखो बाबा मतलब कैसे सेवाएं करते, कैसे काम करते। आप जिस ज्ञान सरोवर में बैठे हो, एक दूध वाला था, तो दूध वाला दादी को बोला दादी हमारी जमीन है ले लो ना। तो दादी क्या करना है हमको जंगल में क्या करना है? नहीं दादी ले लो आपको काम आएगी। तो फिर बातचीत करके जमीन लिया तो बनाने की परमिशन नहीं थी। दादी उससे क्या कैसे हुआ इसे, तो चुप हो गए। तो कुछ दिन के बाद गवर्नर आए थे यहाँ चन्ना रेड्डी जी, तो दादी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भैया, क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन था ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं, ये सीएम के हाथ में होता है। तो क्या हुआ थोड़ा और डिले हो गया। फिर कुछ दिन के बाद उनका फोन आया कि दादी जी आपने कुछ काम बताया था ना, वो क्या था? वो मुझे फाइल भेजो, तो हमारे अशोक भाई लेके गए फाइल दिखाया, बोला मैं माउंट आबू आ रहा हूँ, मैं वहीं सब काम कर दूंगा। वो आए इधर, फिर रास्ता नहीं था इधर, तो उनको बोला कि भाई रास्ता नहीं कैसे, कोई बात नहीं आप मेरा फाउंडेशन स्टोन रखो रास्ता बन जाएगा। रातों रात कलेक्टर आदि सबने रास्ता बना के तैयार करके। देखो बाबा कैसे सेवा करता है जब बच्चों, और आज हम बाबा के गोद में बैठे, इतनी सेवाएं हो रही है, सेवा ज्ञान स्वरूप जैसे बाबा ने कहा ना वरदान दिया, सेवा की खान है। और सचमुच, और जो चीज आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि संकल्प क्या होगा कि हमको ज्ञान स्वरूप में रहना है, एक दिन रहना है, एक दो दिन रहना है, तो बाबा ने देखो आपके लिए भले बीमारी हुआ कोविड हुआ लेकिन आपके लिए वो वरदान हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई ने, बहुत सुंदर अपने जीवन के अनुभव तो सुनाए ही, और दादियों के साथ के बड़े सुंदर सुंदर अनुभव सुनाए आपने अपना अमूल्य समय।
मैं छोटा सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारी माता जी 95 ईयर की थी, अब बताओ इतना उम्र होने के बाद वो सीढ़ी चढ़ के ऐसे ऐसे टेकते रेंगते रेंगते आती थी, और माँ का कितना प्यार होता है, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। हम अपने माँ बाप के लिए बहुत प्यार रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो कमरे में आके मेरी पूरा शरीर का मालिश करती थी, मैं उसको मना करता था नहीं 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 मुझे करना है, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि कैंसर जो कीमो होता है ना, कोई हाथ भी नहीं लगाया हमारे, इतना दर्द होता है। वो धीरे धीरे करती थी, और धीरे धीरे वो नसें है ना खुल जाती थी, और बाबा को बोलते, उसको पता नहीं कैंसर क्या है क्या, इतना बुजुर्ग गांव की है पता नहीं, लेकिन कुछ बीमारी है तो ऐसे ऐसे करके। तो मेरा कहने का भाव है कि दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका भी गया था तो भी रोज एक फोन जरूर करता था। तो हमने अपने माता पिता के लिए रिगार्ड रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, और दुनिया के किसी भी कोने में माँ को क्या चाहिए, बच्चे हाँ कैसी माँ ठीक है इतना ही चाहिए ना। तो हमें करना चाहिए, हमें बहुत रिगार्ड रखना चाहिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो हमें यही रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के प्रति बहुत प्यार रिस्पेक्ट होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाए। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके पहले एक मिनट आप सब इस सूचना जरूर सुनेंगे कि आज रात में